एसोसिएशन संघ। आज हम एसोसिएशन के बारे में चर्चा करेंगे। संघ ध्येयों की पूर्ति के साधन हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तीन प्रकार से कर लेते हैं। प्रथम, वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने साथियों या उनके कार्यों से निरपेक्ष होकर स्वयं अपने ढंग से कार्य करता है। प्रत्यक्षता यह वांछनीय हो सकता है, किंतु जहां मनुष्य साथ साथ रहते हैं वहां इस असामाजिक ढंग की संकुचित सीमाएं हैं। द्वितीय, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य परस्पर संघर्ष भी कर सकते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरों से उन पदार्थों को छीन लेने का प्रयास करता है जिन्हें मूल्यवान समझता है। किंतु यह रीति यदि इसका उचित नियमों से नियंत्रण न किया जाए तो हानिकारक और व्यर्थ बन जाती है और स्वयं समाज के अस्तित्व के विरुद्ध है। यद्यपि यह सत्य है कि संघर्ष सामाजिक जीवन में सदा विद्यमान रहते हैं, किंतु अधिकांशतः आर्थिक प्रतिस्पर्धा की भांति यह सामाजिक दृष्टि से सीमित और नियमित रहता है। अंत में मनुष्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहकारी आधार पर अन्य नागरिकों का सहयोग ले सकते हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने साथियों के उद्देश्य की पूर्ति में किसी प्रकार से और किसी मात्रा में अपना योगदान कर सके। यह अंतिम रीति जो सहकारी प्रयास है स्वयं उत्पन्न हो सकती है, जैसे किसी अपरिचित को सहायता प्रदान करना। यह रीति आकस्मिक हो सकती है, यह समुदाय की प्रथाओं से भी निर्धारित हो सकती है, जैसे कटाई के अवसर पर किसान अपने पड़ोसियों की सहायता करते हैं। दूसरी ओर यह भी संभव है कि समूह व्यक्त रूप से अपने कुछ हितों की सामूहिक पूर्ति के लिए एक संगठन बना ले। ऐसा संगठन जहां होता है वहां एक संघ का उदय होता है। अतः हमारी परिभाषा के अनुसार संघ वह समूह है जो किसी एक सामान्य हित अथवा हितों के समूह की पूर्ति के लिए संगठित हुआ हो। संघ की इस परिभाषा को फिर से सुनिए। संघ वह समूह है जो किसी एक सामान्य हित अथवा हितों के समूह की पूर्ति के लिए संगठित हुआ हो। संघ और समुदाय। ऊपर दी गई परिभाषा से यह स्पष्ट है कि संघ और समुदाय एक ही वस्तु नहीं है, वरन संघ समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। समुदाय के अंतर्गत बनने वाले संगठनों की अपेक्षा स्वयं समुदाय कहीं बड़ा है। उदाहरण के लिए, एक व्यवसाय क्लब अथवा गिरजाघर की तुलना में एक गांव, नगर अथवा राष्ट्र से कीजिए। व्यवसाय, गिरजा अथवा क्लब के संबंध में हम यह प्रश्न कर सकते हैं कि वे क्यों विद्यमान हैं और उनका क्या उद्देश्य है। उत्तर प्रायः यही होगा कि वे विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए संगठित किए गए हैं। किंतु यदि हम यह पूछते हैं कि समुदाय क्यों विद्यमान है, तो इस प्रश्न का हमें कोई निश्चित उत्तर नहीं मिल सकता। हाँ, यदि हम यह पूछें कि एक समुदाय, उदाहरण के लिए एक नगर, अमुक स्थान पर क्यों बसा है, तो यह एक दूसरा भिन्न प्रश्न अवश्य हो सकता है। समुदाय और संघ में दूसरा भेद समुदायों के हित संबंधी पहलू पर विचार करने से स्पष्ट होता है। चूंकि संघ का संगठन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अथवा विशेष हितों की पूर्ति के लिए होता है, हम इन्हीं हितों के कारण संघों के सदस्य बनते हैं। व्यायाम गोष्ठी के सदस्य क्रीड़ा अथवा शारीरिक विनोद के लिए, व्यवसाय के सदस्य जीवन निर्वाह अथवा लाभ कमाने के लिए, और एक सामाजिक गोष्ठी के सदस्य अन्य लोगों का साथ प्राप्त करने के लिए होते हैं। किसी संघ की सदस्यता का महत्व सीमित होता है। यह सच है कि किसी संघ के प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा हो सकती है अथवा एक संघ के हित आधिकारिक घोषणा की अपेक्षा अधिक विस्तृत अथवा भिन्न हो सकते हैं, किंतु यह स्पष्ट है कि कुछ निश्चित हितों की पूर्ति के उद्देश्य को लेकर ही हमारे संघों का संबंध होता है। परिणामतः एक ही समुदाय के अंतर्गत अनेक संघ हो सकते हैं और व्यक्ति भी अनेक संघों का सदस्य हो सकता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष स्वर्गीय बटलर दर्जनों विभिन्न संघों के अतिरिक्त 20 गोष्ठियों के सदस्य एक साथ रहे थे। कम से कम अस्थायी रूप से संघ समुदाय बन सकते हैं। उदाहरण के लिए 17वीं शताब्दी व्यापारिक नियमों की सीमा चौकियां हैं जो प्रत्येक पहलू में समुदाय बन गए थे, अथवा सैनिक टुकड़ियां जो कुछ समय तक पृथक होने के कारण अपने ही समुदाय बनाने पर बाध्य हुई। समुदाय और संघ के बीच विहारों, आश्रमों और जेलों जैसे सीमावर्ती उदाहरण भी हैं जिनकी चर्चा पहले की गई है। दो अन्य प्रमुख सामाजिक संगठन जो संघों और समुदायों की सीमांत रेखा पर स्थित हैं, राज्य और परिवार हैं। आगे चलकर इनका हम विस्तृत विवेचन करेंगे, यहां पर उनका संक्षिप्त परिचय दे देना असंगत न होगा। एक संघ के रूप में परिवार। परिवार के अपने कुछ रूपों में, विशेषकर कुछ आदिकालीन और अत्यंत ग्रामीण समाजों के परिवारों में समुदाय के अधिकांश गुण मिलते हैं। ऐसे मामलों में लगभग पूर्ण रूप से पारिवारिक सीमा में ही लोग परिश्रम करते हैं, खेलते हैं और यहाँ तक कि पूजा भी करते हैं। इस स्थिति में परिवार अपने सदस्यों के जीवन को अधिकांशतः अथवा पूर्ण रूपेण सीमाबद्ध करते हैं। परंतु आधुनिक समाज में अन्य समस्त जटिल सभ्यताओं के समान, जहाँ तक उसके व्यस्क सदस्यों का संबंध है, परिवार निश्चय ही एक संघ हो जाता है। मौलिक रूप से अनुबंधित यानी कॉन्ट्रैक्टिंग होने वाले दलों के लिए यह यानी परिवार निश्चित रूप से कुछ ध्येयों की पूर्ति हेतु स्थापित किया हुआ एक संघ है। यह हित अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हुए भी परिमित है। ज्यों ज्यों श्रम का सामाजिक विभाजन बढ़ता जाता है, त्यों त्यों परिवार के कार्य अधिकाधिक सीमित और निश्चित होते जाते हैं। किंतु एक सर्वाधिक जटिल समाज में भी परिवार उसमें उत्पन्न होने वाली नई जिंदगियों के लिए संघ से बढ़कर ही है। बच्चे के लिए परिवार ही प्राथमिक समुदाय है जो उसे बृहत्तर समुदाय के लिए तैयार करती है। अदृश्य मात्रा में स्वयं परिवार बालक की वृद्धि के साथ साथ एक संघ में रूपांतरित हो जाता है, जिसके प्रायः सीमित किंतु गहन हित होते हैं। अतः वह इस परिवार को सामान्यतः छोड़कर स्वयं एक नए परिवार की स्थापना करेगा। एक संघ के रूप में राज्य। लोग अक्सर राज्य और समुदाय में भेद करने में भूल कर जाते हैं। वास्तव में राज्य सामाजिक संगठन का एक रूप है। उसे सभी पहलुओं में एक समुदाय नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए हम राज्य और गिरजा अर्थात राजनीतिक और धार्मिक संगठनों में भेद करते हैं। समुदाय और राज्य के बारे में अधिक भ्रांति इस कारण रहती है कि अधिकतर हम राज्य और समुदाय दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रयोग संपूर्ण राष्ट्रीय राज्य और उसकी सरकार के लिए अथवा उसके द्वारा शासित राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी किया जाता है। सामाजिक संरचना और विशेषकर उस संरचना के विकास को समझने के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम राज्य के संघीय स्वभाव को पहचानें। राज्य विलक्षण रूप से एक व्यापक अभिकरण है, परंतु इसे केवल अभिकरण मात्र ही कहा जा सकता है। कभी कभी राज्य संपूर्णवादी अथवा सर्वाधिकारवादी रूप धारण कर सकता है और मानव जीवन के प्रत्येक पहलू पर नियंत्रण करने का दावा कर सकता है। किंतु यदि यह दावा पूर्णतया चरितार्थ भी हो जाए, जो कभी नहीं हो सकता, तो भी राज्य समुदाय कभी नहीं बन सकेगा। वह समुदाय पर नियंत्रण करने वाला एक संघ मात्र ही रहेगा। निश्चय ही मनुष्य राज्य के नागरिक अथवा प्रजा होते हैं, परंतु वे परिवारों, गिरजाघरों और गोष्ठियों के सदस्य भी होते हैं। वे मित्र अथवा प्रेमी, वैज्ञानिक अथवा श्रमिक अथवा कलाकार की हैसियत से अपने ही सम्मान अथवा अपने ही वर्ग या जाति के लोगों में संबंध बनाए रखते हैं। मनुष्य की नागरिक की भूमिका कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, वह केवल उन अनेक भूमिकाओं में से एक है जिनको प्रत्येक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के नाते निभाते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि राज्य अन्य सभी संघों से महत्वपूर्ण पहलुओं में से भिन्न है। उसकी विलक्षणताओं, सीमाओं और उन हितों का जिनकी वह पूर्ति कर सकता है और करता है, उसकी विवेचना हम आगे करेंगे। इसके पूर्व के विवेचन में हमें केवल इतना स्मरण रखना चाहिए कि राज्य सामाजिक संगठन का एक रूप है और धार्मिक अथवा व्यापारिक संगठन या क्लब के भांति ही एक संघ है। अभिकर्ताओं के रूप में संघ और उनकी सामूहिक प्रकृति। संघ वे साधन अथवा अभिकर्ता हैं जिनके द्वारा उनके सदस्य अपने समान अथवा गृहित हितों की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। ऐसे सामाजिक संगठन अभिकर्ताओं के रूप में आवश्यकतावश न केवल नेताओं के द्वारा ही कार्य करते हैं, बल्कि अधिकारियों और प्रतिनिधियों द्वारा भी कार्य करते हैं। अधिकारी संगठन पर ऐसे नियंत्रण रख सकते हैं जिससे अधिकांश व्यक्तियों के हित स्वयं अधिकारियों के हित के अधीन हो जाएं। जहां कहीं भी सामाजिक संगठन है, वहां नौकरशाही के नियंत्रण और स्वतंत्रता की सीमाएं बनी रहती हैं। यदि उपरोक्त स्थिति न हो तो संगठन के सदस्यों के हाथ में भी नियंत्रण रह सकता है। उपरोक्त दोनों में से कोई भी स्थिति क्यों न हो, संघ साधारणतया अभिकर्ताओं के द्वारा कार्य करते हैं जो संघ के लिए और संघ के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह तथ्य संघ को एक विशिष्ट प्रकृति और उसे एक विलक्षण वैधानिक परिस्थिति प्रदान करता है। सच तो यह है कि संघ के ऐसे कोई हित नहीं होते जो उसके कुछ या सभी सदस्यों के हित न होते हों, किंतु इसके कार्य करने की पद्धतियां संघ के रूप में इसकी विलक्षणताएं होती हैं। संघ की स्वयं अपनी संपत्ति हो सकती है जो व्यक्तिगत संपत्तियों का योग मात्र नहीं होती। इसके पास अपना कोष हो सकता है जिसे सदस्य मनचाहे ढंग से आपस में वितरण नहीं कर सकते। संघ के अधिकार और दायित्व होते हैं और इसी प्रकार इसकी शक्तियां और दायित्व होती हैं। जिनका प्रयोग इसके सदस्य व्यक्तियों की हैसियत से नहीं कर सकते। एक सार्वजनिक उपयोगिता व्यापारिक संघ, राजकीय दल, क्लब या गिरजाघर में से प्रत्येक अपने संगठन और कार्यों की दृष्टि से एक इकाई के रूप में विशिष्ट कर्तव्यों और विशेषताओं से युक्त होते हैं। इस अर्थ में अपनी विलक्षण पद्धतियों के कारण संघ का एक सामूहिक स्वरूप होता है। जब इन स्थितियों को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त हो जाती है और संघ के कर्तव्य और विशेषाधिकार वैधानिक रूप से निर्धारित हो जाते हैं, तो इसे वैधानिक भाषा में एक निगम यानी कॉरपोरेशन कहा जाता है। हमारे अर्थ में समूह शब्द का प्रयोग, समूह यानी ग्रुप। ग्रुप से हमारा अभिप्राय सामाजिक प्राणियों के एक ऐसे संग्रह से है जिनमें परस्पर विशिष्ट सामाजिक संबंध बन जाते हैं। इस प्रकार जैसा कि हम समझते हैं, एक समूह के सदस्यों के बीच पारस्परिकता सन्निहित होती है। ऊपर हमने संघ की परिभाषा में उसे एक ऐसे समूह माना है जो किसी विशिष्ट हित की पूर्ति के लिए विशेष रूप से संगठित किया गया है। यह विशेष रूप से संगठित होने की विशेषता हमें संघों तथा अन्य सामाजिक समूहों का भेद समझने में सहायक होती है। आगे चलकर हमें ज्ञात होगा कि सामाजिक समूहों के अनेक प्रकार और रूप हैं, जैसे वर्ग और भीड़, प्राथमिक और द्वितीयक समूह, सम्मुखी समूह यानी फेस टू फेस ग्रुप और विशाल संघ। किंतु उदाहरण के लिए एक सामाजिक वर्ग को उसी प्रकार के संघ नहीं कहा जा सकता जैसे कि एक समुदाय को संघ नहीं कहा जा सकता। वर्ग के आधार पर स्थापित संगठन जैसे कुछ राजनीतिक दल अवश्य संघ होते हैं, किंतु वर्ग स्वयं किन्हीं विशेष ध्येयों अथवा कार्यों की पूर्ति के लिए विशेष रूप से संगठित समूह नहीं है। इसी प्रकार जिस समूह को हम भीड़ कहते हैं वह भी संघ नहीं है, यद्यपि कुछ भीड़ें कम से कम अस्थायी रूप से संघ हो सकती हैं और तब ये भीड़ नहीं रह जाती, और इन्हें हम कुछ निर्दिष्ट हितों की पूर्ति के लिए संगठित करते हैं।